पृष्ठ संख्या 14। इस काल में बंगाल के चैतन्य महाप्रभु और उत्तरी भारत के वैष्णवाचार्यों द्वारा परिवर्तित और उनके अनुयायी भक्तों द्वारा प्रचारित भक्ति धारा को परिणाम स्वरूप आम जनता के लिए संगीत को परमावश्यक साधना माना गया। इस प्रकार भजन कीर्तन आदि के माध्यम से जनता को भगवद उपासना की ओर प्रेरित किया गया। इन प्रयत्नों से भारतीय संगीत का प्राचीन आध्यात्मिक स्वरूप कुछ हद तक अक्षुण्ण रह सका, किंतु इसके रचनात्मक स्वरूप में काफी अंतर पड़ा। इन परंपरागत संगीतज्ञों ने जिस परंपरा को चलाया, आगे चलकर उसी के कारण संगीत शिक्षा भक्ति का अविभाज्य अंग बन गई। इस बीच ग्वालियर में राजा मानसिंह तोमर सन 1486 ईस्वी से 1576 ईस्वी तक हुए। इनका काल ग्वालियर राज्य का उत्कर्ष काल रहा है। ये गुणियों के आश्रयदाता रहे और संगीत कला को विशेष आश्रय उनके द्वारा मिला। संगीत के अध्येताओं के लिए संगीतालय खोलने का श्रेय उन्हीं को है। मानसिंह ने संगीताचार्य बैजू, बक्षु, लोहंग, ढोंढू आदि की सहायता से ही मान कौतूहल संगीत की रचना करवाई, जिसके द्वारा ध्रुपद गायकी के गायन विद्यालय में इन्हीं आचार्यों से तानसेन ने संगीत शिक्षा पाई थी। मुसलमान आक्रमणकारियों के धर्म परिवर्तन की नीति के कारण भारतीय विद्याओं को ब्राह्मणों ने छिपाया और परिवर्तन से बचने तथा अपने विद्या भंडार को संचित करने के प्रयत्न में अनेकानेक भारतीय विद्वानों ने अपने ग्रंथों को भूमिष्ठ कर दिया अथवा जला दिया। यही कारण है कि 13वीं 14वीं शताब्दी के आसपास उत्तर भारत में लिखित कोई प्रमुख ग्रंथ उपलब्ध नहीं होता। इस दृष्टि से यह काल दुर्भाग्यपूर्ण रहा। फिर भी इस बात को पूर्णतः उचित नहीं माना जा सकता, क्योंकि मुसलमानों के आगमन से भारतीय संगीत में विदेशी प्रभाव के आ जाने से उसका जो नवीन स्वरूप निर्मित हुआ, उसका अनेक विद्वान समर्थन करते हैं। पेज नंबर 15। संप्रदाय के विच्छेद के कारण 15वीं शताब्दी से पूर्व लिखित ग्रंथों को समझने में वे असमर्थ थे। अतः वे परिवर्तित परिस्थितियों में संगीत के परिवर्तित स्वरूप के विश्लेषण की दृष्टि से नए सिद्धांतों का प्रतिपादन करने में संलग्न हो गए। तत्पश्चात लोचन, अहोबल, रामामात्य, पुंडरिक, विठल आदि विद्वानों ने मेल पद्धति रागों के वर्गीकरण, श्रुतियों पर स्वरों की स्थापना आदि पर पुनर्विचार करके सारगर्भित अन्य ग्रंथ लिखे। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि मुगल काल में संगीत की गुरु शिष्य परंपरा तो निरंतर चलती रही, संगीत के शालेय शिक्षण की प्रथा भी यत्र तत्र देखने में आती है। किंतु इस तथ्य के पुष्ट प्रमाण नहीं मिलते कि उस काल में संगीत शिक्षा का व्यवस्थित स्वरूप विद्यमान था। धीरे धीरे संगीत का प्रचार प्रसार सर्वसाधारण में न रहकर शाही महलों अथवा शासकों के दरबारों तक सीमित होने लगा। संगीत अपने प्राचीन उच्च आध्यात्मिक वह नैतिक आदर्श से च्युत होने लगा। संगीत शाही महलों व दरबारों में केवल विलासिता और मनोरंजन का ही मात्र साधन समझा जाने लगा। मुगल काल में अकबर का काल स्वर्ण युग माना जाता है। उस काल में ध्रुपद का काफी प्रचार और प्रसार हुआ। उनके दरबार में तानसेन आदि अनेक गायक थे जिन्होंने संगीत के विकास के लिए काफी प्रयास किया। मुगल काल के अंतिम चरण 18वीं शताब्दी में मोहम्मद शाह रंगीले के द्वारा संगीत को पर्याप्त प्रोत्साहन मिला। उनके दरबार में जो उच्च कोटि के गायक सदारंग व अदारंग के नाम उल्लेखनीय हैं, जिन्होंने अनेक ख्यालों का निर्माण किया और शिष्यों के द्वारा उनका प्रचार भी करवाया। इनके दरबार में और भी प्रसिद्ध संगीतज्ञ हुए, नूर खां, लाल खां, प्यार खां जानी, गुलाम खां, मोहम्मद खां, गुलाम खां को रसूल खां भी कहा गया है, छन्नू खां और टप्पा के प्रवर्तक शोरी मियाँ इत्यादि। 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में संगीत के साथ न साधारण रूप से चलती रही, इधर मुस्लिम शासकों की शक्ति क्षीण होने लगी। अंग्रेजों का प्रभाव धीरे धीरे भारत पर पड़ता गया और इस उथल पुथल में संगीत कला बड़े राजाश्रयों से पृथक हो स्वतंत्र रूप से छोटी छोटी रियासतों में पलने लगी और उन्हें रियासतों में संगीत कला को पर्याप्त पोषण मिला।